हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। उसी रात करण अपने घर आया। ऑफिस से घर वापस आकर वो सीधा अपने और समर के कमरे में गया। उसे पता था कि समर अब तक वापस आ गया होगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि समर अपनी किताबों में लगा हुआ है, शायद कुछ पढ़ रहा था। करण जाकर उसके पास बैठ गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, आ गए तुम अपने कोचिंग क्लासेस से? समर ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं भैया, आज तो मैं कहीं भी नहीं गया। हॉस्पिटल से सीधा घर ही आ गया था, फिर मेरा मन नहीं हुआ कहीं भी जाने का। समर की बात सुनकर करण को उसकी थोड़ी फिक्र हुई। वो परेशान होते हुए उससे पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना समर? ऋषभ की तरह तुम्हें भी कहीं चोट तो नहीं आई है ना? करण की फिक्रमंदी देखकर समर ने उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा स्ट्रेस था। वैसे भी कल जो कुछ हुआ उस वजह से मैं थोड़ा सा घबरा गया था। वो तो अच्छा हुआ ऋषभ था मेरे साथ, भाई वो बहुत ब्रेव है, वो उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरा। समर ऋषभ की तारीफ करने लगा। करण ने कहा, नहीं बहादुर नहीं, बेवकूफ़ है वो ऋषभ, इसीलिए तो उसे चोट आई। तुमने समझदारी से काम लिया समर, ऐसे लोगों से ऐसे टाइम पर बहस करना बेवकूफ़ी है और ऐसे समय पर बेवजह बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए। समर ने ऋषभ की तरफ से सफाई देते हुए कहा, नहीं नहीं भाई, वो गुंडे तो ज़बरदस्ती सारी चीज़ें छीन रहे थे और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ऋषभ ने भी सब कुछ दे दिया था, लेकिन फिर वो ब्रेसलेट जो उसकी बहन ने उसे गिफ्ट किया था, यानी कि मेरी होने वाली भाभी हैं, वो काफ़ी अटैच था, इसलिए उसने उन लोगों को वो नहीं दिया और उसी में एक बंदे ने उसके हाथ पर चाकू मार दिया। काफ़ी गहरा ज़ख्म लगा बेचारे को, मुझे बहुत बुरा लगा उसके लिए। समर की बातें करण काफी ध्यान से सुन रहा था। वो सोच रहा था कि समर जल्दी किसी के बारे में इस तरह से बातें तो नहीं करता, आज पहली बार ही वो इस तरह की बातें कर रहा था, इसलिए उसकी ऐसी बातें सुनकर करण उसकी तरफ देखकर अपने मन में ये सब सोचने लगा। तब समर ने पूछा, क्या हुआ भाई, आप कहाँ खो गए? करण ने कहा, कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि तुम और ऋषभ शायद काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हो, मुझे तो पता ही नहीं था इस बारे में, मुझे लगा था बस ऐसे ही ऋषभ से मिले हो एक दो बार। इस पर समर ने थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ दो तीन बार ऐसे ही रैंडमली ही मिले हैं और हम इतने भी अच्छे दोस्त नहीं हैं, वो तो बस उस दिन मैं इसलिए उसके साथ वहाँ से वापस आ गया क्योंकि वहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। समर की सफाई सुनकर करण ने बात बदलते हुए पूछा, अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे ये बताओ तुम्हें सिर्फ इस बात का अफसोस है कि ऋषभ को इतनी चोट आई? तुम्हारा मोबाइल फोन और तुम्हारे पैसे जो भी उन लोगों ने लूट लिया, उन चीज़ों के बारे में तुम्हें दुख नहीं हो रहा है? करण की इस बात पर समर काफ़ी लापरवाही से बोला, कहाँ क्या भाई, ये सारी चीज़ें तो फिर से आ जाएंगी ना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर इस सब में ऋषभ ज़्यादा इंजर्ड हो जाता तो? इस बारे में सोचकर ही उसके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था। करण उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं समर, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, तुम इतना मत सोचो, सब ठीक है, और मुझे ये बताओ कि तुम वहाँ पर क्यों गए थे, और फिर ऐसी जगह पर इतनी दूर मत जाना अकेले, और कम से कम बिना मुझे बताए बिना तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बात सुनकर समर ने हाँ में सिर हिलाया और बहुत ही मायूसी से बोला, ओके भाई सॉरी, शायद मुझे नहीं जाना चाहिए था, बट मेरे कॉलेज फ्रेंड्स ने कहा तो मेरा भी मन हुआ एक नई जगह एक्सप्लोर करने का, और मुझे कहाँ पता था कि वापसी के रास्ते में ऐसा कुछ हो जाएगा। इस पर करण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें भी दूसरों के जैसा बनना चाहिए, लेकिन नहीं समर, हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होता है, हमें सिर्फ वो करना चाहिए जो हमें सही लगता है और जिससे हमें खुशी मिलती है, किसी और की तरह बनकर हमें कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। उसकी बात समझते हुए समर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो दोनों साथ में ही खाना खाने के लिए चले गए। अगली सुबह शिविका सोकर उठी। सबसे पहले उसने जाकर ऋषभ को चेक किया। वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था जो मेड ने उसे रूम में दिया था, लेकिन हाथ में लगी हुई चोट की वजह से वो चम्मच भी नहीं उठा पा रहा था और दूसरे हाथ से खा रहा था। एक हाथ से खाना खाने की कोशिश में वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके कमरे में आती हुई शिविका ने उसे ताना मारते हुए कहा, अगर नहीं हो रहा है तो किसी से हेल्प के लिए बोल दूं। किसी से मदद मांगने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे और दूसरों के साथ अपने प्रॉब्लम्स, दर्द और तकलीफें शेयर करने से कोई छोटा नहीं हो जाता और इसके लिए अपना बेवजह का ईगो भी बीच में नहीं लाना चाहिए। इतना बोलते हुए शिविका उसके कमरे में आकर उसके सामने खड़ी हो गई। शिविका की बातें सुनकर ऋषभ ने एक नज़र उठाकर सामने देखा और कहा, अरे नहीं, मेरा ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं है। मैं बस किसी को परेशान नहीं करना चाहता। इतनी भी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बस। इस पर शिविका ने ताना मारते हुए कहा, हाँ हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक बड़ा सा कट ही तो आम पर, और ये सब तो तुम्हें रोज ही होता है ना, फिर तुम्हें तो आदत भी पड़ गई होगी इन सब की, है ना। ऋषभ ने मुंह बनाकर कहा, दी, अब आप ये सब क्यों बोल रही हो, आप भी पापा की तरह ही हो गई हो क्या। शिविका ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, तुझे मेरी बातें बुरी लग रही हैं ना, लेकिन तुम इतना नहीं बोल सकता कि दी मेरी हेल्प कर दो। ऋषभ ने बहुत ही आराम से कहा, अरे लेकिन मैं अपने हाथ से भी ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसकी इस बात पर शिविका ने उसकी तरफ घूर कर देखा, फिर ऋषभ ने प्लेट से अपना हाथ हटा लिया। शिविका एक बाइट चम्मच में लेकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, अच्छा तो फिर ये सोच लो कि मेरा मन कर रहा है अपने छोटे भाई को पैम्पर करने का, इसलिए मैं ये बचा हुआ तुम्हें खिला देती हूँ। शिविका के ऐसा बोलने पर ऋषभ ने मना भी किया, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। उसने ऋषभ को अपने हाथ से नाश्ता खिलाया और फिर उसे अपना कार्ड देते हुए बोली, ये लो, और तुम्हारा मोबाइल फोन तो उन लोगों ने लूट लिया है, तुम्हारे पास इस बार प्लीज ऐसी कोई बेवकूफी मत करना। उसके इस बात पर ऋषभ ने मुंह बनाते हुए कहा, दी, आपको सच में लगता है कि ये सब कुछ मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ और इसमें भी मेरी गलती है। शिविका ने कंसर्न दिखाते हुए कहा, तुम्हारी गलती ना सही, लेकिन तुम्हारी लापरवाही का नतीजा जरूर है, और वैसे भी रात में कहीं से वापस आना तो पूरी सेफ्टी और सब कुछ देखकर मुझे सच में तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है, और ऋषभ, और इस बार तो तुमने अपने साथ समर को भी खतरे में डाल दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि जो हुआ वो सब होना चाहिए था। शिविका की पूरी बात सुनकर उसे समझते हुए ऋषभ ने अपनी सफाई में बस इतना कहा, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था, उसे लिफ्ट देकर, और वैसे भी मुझे नहीं पता था कि रास्ते पर क्या होने वाला है, कोई नॉलेज नहीं था उस बारे में, और आपको क्या लगता है मैं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। उसे समझाते हुए शिविका बोली, हाँ ठीक है, मुझे पता है नहीं चाहते थे तुम, और तुम्हें बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं थी उस रास्ते के बारे में, इसलिए मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम से थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोल रही हूँ, और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ गार्ड्स भी भेज सकती हूँ। वो जल्दी से मना करते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे गार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप की सिक्योरिटी का ध्यान खुद ही रख सकता हूँ।
हाँ, वो तो दिख ही रहा है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैसे तुमने इस बारे में सोचा है कि अगर समर को कुछ हो जाता तो? ऋषभ इस बारे में सोचकर ही थोड़ा हाइपर होते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं समर को कुछ भी होने नहीं दे सकता, उसे कैसे कुछ भी हो सकता है, वो तो बिल्कुल ठीक है ना, और मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश भी की। ऋषभ के कंधे पर हाथ रखकर एकदम सीरियस होते हुए शिविका ने कहा, हाँ ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी, लेकिन मैं बस थोड़ा और केयरफुल रहने के लिए बोल रही हूँ, और इसके अलावा अपनी ये नाइट लाइफ, जो भी तुम्हारा रूटीन है, उसे प्लीज़ चेंज करो। मुझे पता है इतने दिनों की आदतें ऐसे पल में नहीं बदलती, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना करो। तुम इस बारे में सीरियस होकर सोचो, अपनी पढ़ाई और करियर के बारे में भी। इतना बोलकर शिविका वहाँ से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल गई, लेकिन उसकी ऐसी बातों ने कहीं ना कहीं ऋषभ को सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो इन सब के बारे में सोच रहा था तभी उसकी नज़र बेड पर साइड में रखे हुए शिविका के दिए गए कार्ड पर पड़ी। ऋषभ ने कार्ड उठाया और उसे देखने लगा। वो नया मोबाइल फोन और अपनी ज़रूरत का सामान लेने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि फिलहाल वो सब उसकी प्रायोरिटी था। इसी बीच उसे याद आया कि समर का भी तो सारा पैसा, सामान और मोबाइल फोन उन लोगों ने लूट लिया था, तो उसके पास भी कुछ नहीं होगा, और उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, और इसके अलावा वो पता नहीं किस हालत में होगा, उससे बात भी नहीं हो पाएगी। ये सोचते हुए उसे लगा कि वो उसे किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता और ना ही तुरंत उससे मिल सकता है। शिविका के चले जाने के बाद ऋषभ अपने कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आया और उसने ड्राइवर से कार रेडी करने को कहा, फिर उसके साथ वहां से निकल गया। वो सबसे पहले मोबाइल फोन लेने के लिए गया। वो ज्यादा ऐसी जगहों पर नहीं जाता था, इसलिए उसे मोबाइल फोन शॉप के ज्यादा एड्रेस नहीं पता थे। इसलिए उसने ड्राइवर से उसी शोरूम में चलने को कहा जहां पर वो पिछली बार गए थे। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप ऋषभ की कार लेकर वहां चला गया। कुछ देर बाद जब वो लोग वहां पहुंच गए तो ड्राइवर ने शोरूम के सामने कार रोकी। कार रुकते ही ऋषभ कार से बाहर निकलकर उस शोरूम की तरफ बढ़ा। क्रमशः